आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आजकल नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया यानी रिक्रूटमेंट में लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो माइग्रेंट या रिफ्यूजी बैकग्राउंड से आते हैं। क्या AI इंटरव्यू उनके लिए और मुश्किलें पैदा कर रहा है? आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और क्या हैं इसके फायदे, और साथ ही इसके खतरे किन किन को ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 2/3 संगठन भर्ती प्रक्रिया में किसी न किसी रूप में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नया शोध बताता है कि AI इंटरव्यू से महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, वह लोग जिनके लिए अंग्रेजी दूसरी भाषा है, और विकलांग लोग ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। हमने बात की रिक्रूटमेंट विशेषज्ञ निक्षा गुप्ता से, जो वर्षों से विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले कैंडिडेट्स के साथ काम कर रही हैं। निक्षा, SBS हिंदी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें ये बताइए कि AI इंटरव्यू आजकल कैसे काम करते हैं और ये रिक्रूटमेंट में कितने आम हो गए हैं?
अपने रिक्रूटमेंट या भर्ती के एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकती हूँ कि आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी कॉमन है किसी भी इंसान को किसी भी जॉब में भर्ती करने के लिए। तो ये कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ, किन किन स्टेजेस पे होता है प्रोसेस की वो मैं आपको बताऊंगी, और कितना कॉमन है वो भी। तो ये 2-4 मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे जरूरी स्टेजेस पे होता है। जैसे पहले आपका रेज्यूमे या आपके CV स्क्रीनिंग पर, यहाँ पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह से ट्रेन किया जाता है डेटा सेट से कि आप, मतलब AI एक तरीके से CV स्कैन करेंगे, उसको इसकी पूरी जांच करेंगे, और जो उसमें कीवर्ड्स होते हैं उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होती है। जैसे कि आपने रिज्यूमे में, फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इंजीनियर का रिज्यूमे देख रहे हो, उसके अंदर उसने कौन से टेक्नोलॉजीज, कौन से टूल्स यूज करे हैं, अगर वो उस जॉब के लिए जरूरी है, तो वो उस CV उस इंसान को AI ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट कर लेगा। वो रिज्यूमे स्क्रीनिंग स्टेप पर होता है। फिर इसके अलावा AI चैटबॉट्स, ये लोग क्या करते हैं कि अगर किसी इंसान के रिज्यूमे में कुछ वर्ड्स हैं या फिर कुछ स्किल्स हैं, जैसे लैंग्वेज स्किल्स या फिर वर्क वीजा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए आपको वीजा चाहिए, उसको एनालाइज करते हैं, और एक तरह से प्री स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि जब आप एक इंटरव्यूअर यानी एक इंसान यानी मुझसे मिलोगे, उससे पहले मेरे लिए प्री स्क्रीनिंग नोट्स रेडी होंगे कि इसको ये चीजें इसके CV में है तो हम इसे आगे ले जा सकते हैं। तो वो चैटबॉट्स और प्री स्क्रीनिंग भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेता है। तीसरा लेवल ये हो सकता है कि एक वीडियो के थ्रू आपकी पूरी प्रोफाइल का जांच AI करता है। वीडियो में आपका टोन, आपका उच्चारण, एक्सेंट, आपका कॉन्फिडेंस, आपके चेहरे के हाव भाव, जिसे हम फेशियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, इन सबको AI एनालाइज कर लेता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मैं इस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बायस होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग को अच्छी अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, क्योंकि अंग्रेजी उनकी पहली भाषा नहीं है, उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनका जो टोन है, बोलने का तरीका है, उनका जो उच्चारण करने का तरीका है शब्दों का, और उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, वो AI एकदम से पकड़ नहीं सकता अगर उसे ढंग से ट्रेन नहीं किया। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बैक स्टोरी, एज इन जो उसका उसके जो बेस पर चीजें हैं, वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा, किस डेटा पे उसे ट्रेन किया गया है, उसके हिसाब से वो आपको रिजल्ट्स देता है
जी।
फिर इसके अलावा, उसके बाद इन सब चीजों की जब स्कोरिंग होती है, उसमें AI जो स्कोर देता है उसके हिसाब से मैं एज अ रिक्रूटर, अ ह्यूमन रिक्रूटर जिसे बोलोगे, अपना एक वो बनाएगा शीट कि हाँ, मुझे इस इंसान को इस प्रोसेस में आगे लेकर जाना है कि नहीं। अगर AI ने उसको कम नंबर दिए होंगे उस पूरे प्रोसेस में, तो वो इंसान मेरे भर्ती के प्रोसेस में आगे नहीं जा पाएगा। तो AI एक तरह से आप बोल सकते हो फिल्टर की तरह काम करता है रिक्रूटर्स के लिए, ताकि वो आगे उस उस इंसान या उस कैंडिडेट को ले जा पाए या नहीं। और ऑफ कोर्स इसमें बायस देखा गया है, ऐसा हो रहा है, तो ये मैं जरूर बोलूंगी प्रोसेस वाइज ये ऐसे चलता है। और ये जॉब रिक्रूटमेंट या भर्ती के प्रोसेस में काफी अनफेयर हो सकता है, क्योंकि मैं एक स्टडी भी पढ़ रही थी जो ऑस्ट्रेलियन आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में एक स्टडी भी हुई थी कि जिसमें पता चला था कि एआई सिस्टम्स जो रिक्रूटमेंट में भर्ती के प्रोसेस में आजकल यूज हो रहे हैं, उन्हें अमेरिका के डेटा पे ट्रेन किया जाता है, जिसकी वजह से जो नॉन इंग्लिश स्पीकर जिनकी पहली भाषा अंग्रेजी नहीं है उनके लिए काफी बायस या काफी भेदभाव उसमें देखा गया है, जो कि बिल्कुल उनको एक डिसएडवांटेज या फिर एक गलत स्टार्ट देने के उसमें काफी ज्यादा योगदान देता है मेरे हिसाब
जी।
से।
तो निक्षा, क्या आपको लग रहा है कि एआई का प्रयोग बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है आजकल?
मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी तक अगर हम डेटा भी देखें, अगर हम गणित देखें इसकी, तो आजकल, और प्लस मैं अपने खुद के 7-8 साल के अनुभव से आपको बता सकूं, तो अगर ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें तो आई थिंक 30% तक एम्प्लॉयर्स अभी तक, स्पेशली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहां पर, वो लोग बिल्कुल एआई का ही यूज करते हैं, क्योंकि उससे एक ह्यूमन रिक्रूटर मुझ जैसे लोगों का काम आसान होता है।
जी
और ये नंबर ये जो मैंने आपको बताया है, ये बढ़ने की इसलिए संभावना है क्योंकि आसान करते हैं आपका काम। आपको बस एक फाइनल शीट देखनी होती है, एक पेपर देखना होता है कि एक इंसान का ओवरऑल नंबर कितना आया है। अगर वो क्वालिफाई करता है तो उसे हम अगले पड़ाव, अगले इंटरव्यू के लिए उसको आगे ले जा सकते हैं।
जी
तो स्क्रीनिंग से लेकर पहले जो आपका एनकाउंटर होता है कंपनी, उससे लेकर आप अगले स्टेज तक पहुंचते हो या नहीं, वो बिल्कुल इस एनालिसिस, इस पूरे गणित के ऊपर निर्भर करता है।
माइग्रेंट और रिफ्यूजी कैंडिडेट स्पेशली, उनको एआई इंटरव्यूज में कौन सी चुनौतियां सबसे ज्यादा होती हैं? खासकर आजकल कई कंपनियां फेस टू फेस इंटरव्यू भी एआई के थ्रू कर रही हैं, तो लगता है कि शायद किसी इंसान से बात होगी पर मशीन से बात हो रही है। तो उस दौरान सबसे ज्यादा कौन सी चुनौती जो है वो लगती है आपके हिसाब से?
मेरे हिसाब से सबसे पहली चुनौती तो एक्सेंट है, जो उच्चारण करने का तरीका है, वो ही सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है।
जी
आपका कॉन्फिडेंस, आप अंग्रेजी कितने अच्छे से बोल सकते हैं, वो भी बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर। मैंने एक स्टडी में ये भी पढ़ा था कि एआई सिस्टम जो जिनकी पहली भाषा अंग्रेजी नहीं होती, उनके उनके उच्चारण या उनके एक्सेंट को कम से कम 12 से 22% तक गलत समझते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा नॉलेज वाला इंसान वहीं पर रिजेक्ट हो जाता है।
जी
अब हमारा जो एक तरह से सिस्टम बन चुका है चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करने का, उनको और ज्यादा आसान बनाने का, इसीलिए वहां से एक ह्यूमन रिक्रूटर मेरे जैसे लोगों को हटाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाया जा रहा है, ये भूलकर कि हर चीज का समाधान एआई नहीं है। ह्यूमन
जी
रिसोर्सेस या रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, इसमें ह्यूमन टच या इंसानों की बहुत ज्यादा अभी भी जरूरत है,
जी
ताकि वो ये फिल्टर लगा सकें।
जी निक्षा, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर कोई पहली बार एआई इंटरव्यू देने जा रहा हो, खास तौर से फेस टू फेस, तो आप उन्हें क्या जरूरी सलाह देना चाहेंगी, क्या टिप्स होंगी, और क्या किसी एआई इंटरव्यू के लिए कोई तैयारी कर भी सकते हैं या नहीं?
एक्चुअली टिप्स दोनों तरफ होंगी। पहले मैं लोगों के लिए टिप्स बता सकती हूँ, जितना मेरे एक अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप एआई के भेदभाव को नहीं दूर कर सकते, एक हद तक आप जरूर कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो, क्योंकि आपको पता है कि आपको अंग्रेजी में इंटरव्यू देना है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर कर जाइए। ऑफकोर्स किसी का भी रातों रात उच्चारण करने का तरीका नहीं बदल सकता, लेकिन सेट क्वेश्चंस जो हर तरह के इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, एटलीस्ट उनका अच्छे से तैयारी करके जाइए, ताकि आप जो कम्युनिकेट करें, जो आप बोलें, अपने स्किल्स, अपने पुराने अनुभव जो किसी भी देश में आप लेकर ऑस्ट्रेलिया आए हो, उसे आप कॉन्फिडेंटली आगे रख सके।
जी
दूसरा, आप ये जानकारी रखें कि आजकल हर कंपनी, अगर हर नहीं तो मोस्ट कंपनीज यूज कर रही हैं एआई, तो आपको इस बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि एआई रिक्रूटमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, ताकि आप अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर सके, क्योंकि कभी कभी लोगों को पता भी भी नहीं होता, और वो जाके इंटरव्यू देकर आते हैं और उन्हें फिर वो उसमें सफल नहीं होते हैं और
जी
फिर वो निराश होते हैं।
ठीक
इसके अलावा आप हमेशा अपने लिए इंटरव्यूअर से, हर ईमेल आईडी कंपनी देती है अपनी, उस पर उनसे एक फीडबैक जरूर मांगे कि अगर आपको लगता है कि अगर आप असफल इसलिए हुए हैं क्योंकि आपके बोलने के तरीके, आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके एक्सप्रेशंस, इन वजह से आपको नहीं आप सफल नहीं हुए हैं, तो आप एक फीडबैक जरूर मांगे, अपना कंसर्न जरूर भेजे, क्योंकि हो सकता है वो इंटरव्यूअर आपको एक कंस्ट्रक्टिव, एक अच्छा फीडबैक दे पाए
जी।
और आप अपने अगले इंटरव्यू के लिए उसको बेटर प्रिपेयर करें। ये कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे आप थोड़े पहले से ही आप उस चीज के लिए तैयार हैं और आप आगे अगले अपने इंटरव्यू में अच्छा दे सकते हैं। ये जागरूकता सिर्फ एक कैंडिडेट में नहीं होनी चाहिए, ये एक एम्प्लॉयर में भी होनी चाहिए, एक कंपनी में भी होनी चाहिए, कि ये जो AI टूल्स ये लोग यूज करते हैं वो सिर्फ अमेरिकन या US बेस्ड डेटा पे ट्रेन ना हो, वो अलग अलग डाइवर्सिटी या एथनिक ग्रुप पर ट्रेंड हो, अलग अलग भाषाओं पर ट्रेंड हो, ताकि वो एक फेयर असेसमेंट कर पाए। और कंपनीज के अंदर भी ये पारदर्शिता होनी चाहिए कि वो एक ट्रांसपेरेंट आंसर इन सारे कैंडिडेट्स को दे पाए
जी।
इन सब चीजों की एक रेगुलर ऑडिट भी होनी चाहिए कि कितने लोग सफल हुए, किस बैकग्राउंड से सफल हुए और असफलता का कारण क्या था। ये ऑडिट्स अगर रेगुलरली होंगी तो मुझे लगता है कंपनी भी एक अच्छा डेटाबेस पे काम कर पाएंगी और अच्छे कैंडिडेट्स को लेकर आ पाएंगी जिनके पास हो सकता है थोड़ी कमियां हो बोलने और प्रेजेंटेशन में, जैसे वो बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन प्रेजेंटेशन में, लेकिन उनके पास उनका स्किल, उनका पुराना अनुभव काफी अच्छा है जो कंपनी यूज कर सकती है।
जी निक्षा, हमारे साथ SBS हिंदी पर जुड़ने और हमारे लिसनर्स के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑस्ट्रेलियन रिस्पॉन्सिबल AI रिपोर्ट के मुताबिक 43% ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूटमेंट्स में मॉडरेट यानी मध्यम स्तर पर AI का इस्तेमाल करते हैं और 19% इसे एक्सटेंसिवली यानी बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रहे हैं। पर डेटा सेट्स में पक्षपात, भाषाई विविधता की अनदेखी और सांस्कृतिक संदर्भ की कमी चिंता का विषय है। आज के उच्च तकनीक के समय में AI की उपस्थिति को नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन जरूरी है कि उसका न्यायोचित एवं समावेशी इस्तेमाल किया जाए। उम्मीद है आज की बातचीत ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा कि क्या AI इंटरव्यू सबके लिए वाकई बराबरी वाला मौका देते हैं या नहीं। आप सुन रहे थे SBS हिंदी, मैं हूँ स्वाति शर्मा, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। इस साक्षात्कार में दी गई जानकारी सामान्य है, SBS ना तो इससे सहमत है और ना ही असहमत। अपनी स्थिति पर स्पष्ट सलाह के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।